अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसत्कामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो श्री गुरु गौरांग धार्मिकाजी भाई जी की कृपा से आज 28 दिन परिक्रमा स्पष्ट रूप से निर्विघ्न रूप से हुई। आज भी हरीर वन कोकिल वन जावट बैठान चरण पहाड़ी कोट वन आज नौ की इत्यादि स्थानों को होकर के यात्रा सकुशल लौटी। आज इस कार्तिक महीने में के शुभ दिन में आज के दिन प्रपूज्य चरण नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। आज ही के दिन वो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। लंबी भगवान ने आयु दी थी करीब 102-103 वर्ष तक की लंबी आयु थी। प्रभुपाद के गणों में उनकी सबसे लंबी आयु थी। परम वैष्णव थे। 1946 ईस्वी में त्रिदंड कटवा में ग्रहण कर लिया। कहाँ लिया उन्होंने दंड लिया? पहले उनका नाम प्रणवानंद ब्रह्मचारी था। अच्छे ब्राह्मण फैमिली के थे। प्रभुपाद की हरी कथा सुन करके घर बार छोड़ करके चले आए। बड़े सुंदर लेखक थे। पहले अमृत बाजार पत्रिका या किसमें संपादन का कार्य लेखन का कार्य करते थे। तो प्रभुपाद जी के चरणाश्रित हुए तो उनको उन्होंने नदिया प्रकाश और मासिक गौड़िया में उनको एडिटर बना करके उनको रख दिया। प्रभुपाद के अपहरण के बाद में उन्होंने भी गौड़िया मठ छोड़ दिया और गुरु महाराज जी के साथ में कुछ दिनों तक थे। चुचुड़ा में आए संन्यास लेने के बाद में उनका नाम हुआ भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। जब आए तो गुरु महाराज जी ने उनका सेवा का भार खाने पीने इत्यादि का रहने की व्यवस्था सब हमारे ऊपर में दे दी। तो मैं उनकी गुरु जी की सेवा करते हुए भी उनकी भी सेवा करता था। जब वो स्नान करने जाते निकट में गंगा रहने पर जरूर जाते, जमुना रहने पर जमुना में स्नान, समुद्र में रहने पर समुद्र में स्नान। तो हमारे साथ में मैं उनको लेकर के जाता, हमारे पूर्वाश्रम का एक लोटा था तो मैं भी उसको लेकर के गया स्नान करने की चूड़ों में और पानी पढ़ा। ज्वारभाटा का पानी चुचुड़ा तक आता है, वो बढ़ा हमको मालूम नहीं, वो लेकर के लोटा चला गया। फिर पूरी महाराज जी को स्नान करा करके लौटा, सोचा अच्छा हुआ पूर्वाश्रम का एक स्मृति था जो भी खत्म हो गया, वो चला गया। तो उनके खाने पीने की देखने की सारी व्यवस्था करता था। कुछ दिनों के बाद में फिर वो पूज्य पाद माधव महाराज जी के साथ में ब्रजमंडल की परिक्रमा करने लगे और उनकी पत्रिका के, क्या नाम है उनकी पत्रिका, चैतन्यवाणी, उसका एडिटर बना दिया। अधिकांश लेखन कार्य वही, उनके ग्रंथों का प्रकाशन का भार वही लेकर के सब करते। अंत में उन्होंने अपना कालना में एक आश्रम बनाया और फिर इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में पुरी धाम में और एक जगन्नाथपुरी में, एक मायापुर में उन्होंने आश्रम बनाया। वृंदावन में भी पीछे से उनके अप्रकट के बाद में शायद उसे रहते हुए यहाँ पर हुआ। परम वैष्णव थे, बोलते थे तो आंख बंद करके बोलते थे, आंख खोलते नहीं थे, बोलते हुए चले जाएंगे देखेंगे कोई है कि नहीं है, कुछ नहीं थे बोलते जाते। और हो सकता है ये सब लोग उठ करके चले गए हो तभी वो नहीं थे, वाणी रुकती नहीं थी। सभी लोग उनको सम्मान देते थे, सभी मतों से हमारे गुरु जी को बड़े भाई कहते थे, विनोद दा। संन्यास गुरु महाराज देने के बाद भी सब गौड़ियों मठों के जितने सन्यासी ब्रह्मचारी विनोद दा। हमारा परम सौभाग्य हुआ कि मैं उनकी सेवा भी की और उनकी हरिकथा भी प्राय सुनने को मिलती थी। और उन्होंने कहा था कि हिंदी में पुस्तक प्रकाश करते हैं तो हमको बहुत आनंद होता, इसलिए अपनी सारी पुस्तकें जो प्रकाशित हो वो जरूर हमको, तो मैं ले जाता था जो जो पुस्तक होती थी और उसको बड़े प्रेम से सिर पर रख करके मुझे आशीर्वाद दे। अंतिम समय में पूरी में जब थे, जबकि बोल चाल बंद थी, उस समय मैं उनके दर्शन के लिए पुरी में गया तो मैंने कहा कि मैं आपका दास नारायण महाराज आया हूँ गौड़ीय वेदांत समिति से। सुनकर के उन्होंने आँख खोल दिया और सेवकों कहा कि बैठाओ और हमारे सिर के ऊपर में तुम बहुत सेवा भी करो। मैं बहुत खुश हूँ और इसके बाद मैं चला आया और कुछ दिनों के बाद मैं सुना जो पूरी में ही अंतर ध्यान लीला, आज उनके चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति है। वे जहाँ भी रहे हम सब लोगों के ऊपर में कृपा कर गौर प्रदान गौड़ियों मठ में विग्रह प्रतिष्ठा वही करते हैं वो और सौती महाराज, पूज्यपाद सौती महाराज। हमने सौती महाराज से सब लिया और उनका भी चक्र प्रतिष्ठा इत्यादि कुछ लिया लेकर के हमारे कौन तीर्थ महाराज जी सब सीख लिए हैं अब ये करते हैं और मैं सब नहीं कर पाता। गौ प्रेमानंद कृष्ण कृष्ण
गोस्वामी महाराज और सबसे सज्जन गुरु श्री भारती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर He had the longest lifespan of more than
अब क्रमशः गंभीर विषय आ रहे हैं। अखन गंभीर विषय चार प्रकार के अनर्थ तथा उसका विवरण। अनर्थ चार प्रकार के हैं, दुष्कृति उत्थ, सुकृति उत्थ, अपराध उत्थ, भक्ति उत्थ, दुर्निविवेश, दुर्भिनिवेश, रागद्वेष, रागादि पूर्वोक्त पांच प्रकार के क्लेश ही दुष्कृति उत्थ है। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल से दुखजनक विषयों में अभिनिवेश होना, द्वेष, राग, अविद्या, अस्मिता, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। द्वितीय वृष्टि में वर्णन किया जा चुका है। ऐसे दुष्कृतों से, पूर्व जन्मों के दुष्कृतियों से, पाप कर्मों से होने वाले अनर्थों को दुष्कृति उत्थ अनर्थ कहते हैं। सारांश यह है, अनादिकाल अविद्याग्रस्त कृष्ण बहिर्मुख जीवों की दुर्वासना के फल से देह और दैहिक में मैं और मेरा या जड़ी अभिमान होकर भोग वस्तुओं के प्रति राग या प्रीति और तीतापादी दुखों के प्रति द्वेष होता है और उसके फलस्वरूप देह दैनिक वस्तुओं में प्रचंड अभिनिवेश का प्रबल संस्कार जीवों के हृदय में मूल है। भजन के समय वही संस्कार श्रवण कीर्तन इत्यादि में बाधा देते हैं। जब दुख आएंगे, बीमारी हो गई, कोई कभी कुछ हुआ तो मन नहीं भजन में लगता, उस समय हरिनाम भी नहीं होता। तब हरिदास ठाकुर आदि जैसे महात्माओं के लिए नहीं, साधक साधारण कोटि के हैं, जहाँ बीमार हुए भजन बंद हो। हमने देखा था पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी बीमार हो जाते तो जितना शरणागति कल्याण कल्प तरु और जितने श्लोक सब कीर्तन श्लोक पाठ करते, जब तक बुखार उतर नहीं जाता तब तक ऐसे ही करते, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, पांच घंटा, दस घंटा बस कीर्तन करते, जितना बुखार तेज होगा उतना ही करते। सुकृति अर्थ सुकृति से उत्पन्न अनर्थ पूर्व पूर्व जिए हुए जन्मों में किए हुए सत्कर्म और सकाम पुण्य कर्मों के फल से अनित्य स्वर्गादि लोकों के सुख भोगों की जो कामनाएं हैं उनको सुकृति उत्थान अर्थ करते हैं। साधक भजन तो साधन भक्त के भजन के समय पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार वशतः भोग की कामनाएं हृदय में उत्पन्न होती है, यह सुकृति जात अनर्थ है। मुक्ति की कामना भी इसी के अंतर्गत है। भक्ति और मुक्ति की कामना हृदय में रहने से भजन का आस्वादन कदापि संभव नहीं। किसी भोग की लालसा है, मुक्ति की लालसा है, कभी भी भजन रस का भजन रस उसे नहीं मिलेगा। भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदि पिशाची हृदि वर्त के तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अद्भुत। भक्ति मुक्ति की कामना की पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान है तब तक सुकमल भक्ति वृत्ति हृदय में कैसे आए। अब अपराध उत्थ, अपराध से जो अनर्थ होते हैं उन्हें अपराध उत्थ कहते हैं। ये अपराध पापों से भी अधिक भयंकर होते हैं, और वो यदि अपराध धाम में हो तो वज्रेप हो जाते हैं। ये भजन में विशेष करके बाधक है। कहते हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेन कारण भक्ति करण प्रकाश। एक नाम भी यदि हृदय में शुद्ध नाम कुछ हो जाए तो हृदय में भक्ति का प्रकाश हो जाए। प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, श्वेत कंठ पुलक आदि गदगद अस्तु। अनायासे भय संसार नष्ट हो जाता है, और कृष्ण की प्रेममयी सेवा आनंदमयी सेवा उसे प्राप्त हो जाती है। भाई एक कृष्ण नाम का इतना फल है, एक कृष्ण नाम फलो पाई एतो धन, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबा। किंतु हम लोग जैसे बहुत बार कृष्ण नाम लेते हैं तभी प्रेम नहीं आता, आंखों में अश्रु धारा नहीं आता, समझो तबे जानिए अपराध कहां थे। प्रचुर कृष्ण नाम बीज कहें, समझ लो पूर्व पूर्व जन्मों के अपराध हैं। इसलिए अभिशांत नाम वही रो रो कर नाम प्रभु से प्रार्थना करते हुए अभिशांत नाम करें तो वो दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। कहे हमने तो कोई अपराध नहीं किया न कर रहे हैं, किंतु पूर्व जन्म का भी अवशेष है भाई, नहीं तो प्रेम जरूर होता। नाम में इतनी शक्ति है तो नहीं हो रहा है तो जरूर है। ट्रांसलेशन हाँ, पूर्व जन्म का जरूर अपराध है, इस जन्म में नहीं हो रहा है, किंतु इसीलिए अभी प्रेम नहीं हो रहा है। प्रेम के जो विकार है हर्ष रोमांच कंप अश्रु ये भी नहीं हो रहे, तब समझो जरूर है।
As we return to a majority campaign, then a very deep subject comes up describing four types of anansa, aparadas, apokasu, anansa, duskriti uta anansa, sukriti uta anansa, aparadas uta anansa, and bhavi uta anansa. Duskriti uta anansa means obstacles arising from one's past life or this life bad activity. The Jivatma, because of his rejection of the service of Krishna, is rotating in his ocean of birth and death, tasting the results of his previous activities. Then he suffers from five types of avidya or ignorance, which are rag, attachment, dvesh, avidavesh, vismiti, and avidya, asmita. Five types of ignorance. Dvesh, rag means attachment. Means the lineage becomes absorbed in thoughts of I and mine, and becomes absorbed. The lineage becomes absorbed in thoughts of I and mine. This is rag. Dvesh means when suffering comes, one feels remorse for that suffering. Vismita means forgetfulness. Avidaveshta means absorption in that which is false. And avidya asmita, absorption in ignorance. Then, the result of his previous bad activities, the living entity suffers these five types of klesh or difficulty. This is called dushriti guna anatta. For example, we are not concerned with Mahabharata, but with ordinary sadhana, as a result of one's past activity, one may suffer some unhappiness or some disease. This creates an obstacle in a Harivachan. But this is not so for Mahabhagavat, like Sri Haridas Thakur, or like Bhakti Kamala Rasulan Maharaj. We saw that whenever he had some disease, then what would he do? He would not lie down sick, he would take Bhakti Vinod's Kirtan, Saranagati, other kirtans, and as long as he would sing, as long as he had a fever, he would pray, loudly chant those asikams for 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours. Therefore, disease is not an obstacle for the bhajan of Mahabhagavat like that. Shukriti Utapunata. As a result of one's previous good activities, then one gets a result which results in material happiness and facility for enjoyment. This is a result of one's past life activities. This also leads to a desire for liberation. Therefore, when material desires arise in the heart, we should understand this is a result of our Shukriti Uta Unata, our past materially good activities. Sri Rupa Goswami has said, Bhakti Mukti Sri Adiyara Visachi Yuri Vajate, Harapati Sukhasan Katam Udo Vayopade. As long as the heart is haunted by the wish of desire for material enjoyment and liberation, then the happiness of pure devotion cannot be experienced. That time, as long as we have desire for material enjoyment, we can sense the last emanating from the Holy Name. The third type of anatta is called aparadhuta anatta. Aparadhus offense is worse than sinful activity because when performed habitually, then it makes the heart harder than a thunderbolt. Therefore, we hear descriptions of the glory of the Krishna's name, Eva Krishna Mukhari Shabhapanash. Only by the external result of chanting one time the name of Krishna, is that all sins are completely destroyed, and it also causes the arousal of prem, and on the body of that sadhak we will see symptoms of ecstasy, like the tears flowing from the eyes, the hair standing on end, and the voice being choked. But we are chanting so much Harinam, but still prem is not arising. Therefore we should understand this is a result of our offences committed in this life. If one may say, well, I'm not committing any aparad, then we should understand it is due to offenses committed in previous life. Therefore, what should we do? We should simply weep and repent and praise the name that he will free us from these things, these obstacles.
Aparad manikya. Apa. राग और अपगत दूर हो गया है। राग माने प्रसन्नता, भक्ति देवी की, राधा कृष्ण की उपासना, जिसे हमारी कृष्ण की सेवा भजन नष्ट हो जाए वो अपराध। इसलिए इस जन्म में हम देखते हैं कि हमारा कोई अपराध नहीं है, हम अपराध भी नहीं कर रहे हैं, किंतु हरिनाम करते समय में चित्त द्रवित नहीं होता, अस्वस्थिक विकार नहीं आते, तो समझना है कि पूर्व पूर्व जन्मों का अपराध का ये फल है, चाहे वो ज्ञात रूप से किया है या अज्ञात रूप से। उसको अनुताप करते हुए और उसे वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए, हरिनाम से प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा अपराध दूर हो और शुद्ध कृष्ण नाम हमारे हृदय में जागृत। मनुष्य जीवन अर्थक तो है, किंतु कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं। इसी बीच में सब सारी कामनाओं को छोड़कर, जिस प्रकार से हमने माधुर्य कादंबनी की व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, ऐसा जीवन बनाओ, सारी कामनाओं को हृदय से निकालो, जो कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से उपस्थित होता है उसे जीवन निर्वाह करो, अधिक की चेष्टा मत करो। भगवान का भजन करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हो सके तो निजे गुरु हैया तारो यही देश, महाप्रभु के उपदेश के अनुसार में अपने पहले जीवन को सार्थक करो, भजन करो, उसे उपलब्धि हो तो दूसरों को भी मदद करो। दूसरों को भी शिक्षा दे, जिससे कि वो भजन कर सके। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए गए हैं, बहुत शक्तिशाली रासस्थलियों में आप लोग गए हैं, वहां की विद्यवती कथाएं भी सुनी है, इसलिए बहुत कुछ सुजोग है। ये इस जन्म में ही वैसा भजन कर और जीवन को सार्थक बनाए। कल हम लोगों का ऊर्ज व्रत नियम सेवा समाप्त होगा, तो इसका मतलब नहीं है कि अब सब कुछ बंद हो गया। ये तो एक चाबी दी गई, दामोदरस्तक सब समय पाठ कर सकते हैं, और जो नियम हम लोगों ने बतलाया है, जो कीर्तन इत्यादि करते हैं, उन कीर्तनों में भी राधा कृपा कटाक्ष नंदनास्तक और जो करते हैं उसको आप लोग करेंगे, उसको छोड़ेंगे मत। और कल जिन चीजों का हम लोगों ने चतुर्मास्य में और कार्तिक व्रत में प्रत्याग किया था, जिन वस्तुओं को, भोजन सामग्रियों को, वो कल श्री ठाकुर जी को भोग दे करके पुनः वो सब चीजें ग्रहण की जाएगी। पहले ठाकुर जी को भोग, वैष्णवों को निवेदन करो, वैष्णवों को खिला पिला करके और सब अपना व्रत समापन करो। कत्यानी व्रत, कत्यानी व्रत कल से आरंभ होगा, एक महीना। तो जो करना चाहें वो अपना कत्यानी व्रत करेंगे। अभी हम लोग परसों कल बस आएंगी, सब लोग वृंदावन जाना चाहेंगे, मथुरा जाना चाहेंगे, लौट जाएंगे, और 7 तारीख को यहीं से बस जाएगी दिल्ली के लिए। 8 तारीख को जाएगी। जो जाना चाहेंगे ब्रह्मचारी, विशेष करके जिनको नवद्वीप जाना है, उन सबको इसमें से जाना है, उनका नाम कल हम लोगों ने पाठ किया, वो सब लोग जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी those who want to go and to participate in Navdeep Parikrama party in Bengal,
preaching,
they can go. Even Western devotees also, Bengali will go, so many and others will go. Western devotees may go there to preach for 3-4 months and then they can go here and there. Now, अभी मधु और दामोदर जी की पार्टी का रास होगा, इसके बाद में और बैंगलोर वाले प्रस्तुत हो जाएगा अपना कीर्तन के लिए।
Know the eight symptoms of ecstasy appearing on our bodies. Then if we are not committing offense in this life, it must be in our previous lives. Knowingly or unknowingly, we have committed some aparad, some offense. Therefore, we should pray to Hari Guru and Vaishnava to dispel our offenses and to give us the treasure of the command. This human life is very rarely achieved. and in their neighbors at any time. Therefore, we should give up all our material desires. Therefore, what comes to us according to our previous karma, we should accept only that which is necessary to maintain our lives. And always remember that our goal is Hari Bhajan. Therefore, we should make our human life successful first, and then bring it in our lives. Therefore, in this month, we have learned so many beautiful instructions. We will visit so many great holy places, high places.
Oh.
A great chance has been offered to us that in this very life we can protect our
Bhajan.
Therefore, tomorrow, after we visit our life, our Kali Yuga is finished. But that does not mean that we come away from our journey. We should consider this to be our way, to charge.
Tomorrow class will be as usual, in model.
Tomorrow morning class we have normal time, we're able to come out at 5:30.